शारदा देवी ने एक तीखी नज़र आस्तिक पर रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, और आस्तिक भी अपनी खतरनाक नज़रों से बस शारदा देवी को ही घूर रहा था। शारदा देवी ने अरुणिमा के साथ और कुछ बातें की। दोनों क्या बातें कर रही हैं, आस्तिक को ये जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसकी नज़र तो सिर्फ शारदा देवी की हरकतों पर थी। और शारदा जी भी अरुणिमा की बातों का जवाब तो दे रही थी, लेकिन उसकी एक तीखी नज़र आस्तिक के ऊपर भी बनी हुई थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और आस्तिक से कहते हैं कि शारदा जी की हालत अब पहले से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और लगेंगे शारदा देवी को पूरी तरह से ठीक होने में। मिलने का समय पूरा हो गया था। डॉक्टर शारदा देवी को वापस उनके कमरे में ले जाने लग रहे थे, पर जब शारदा देवी आस्तिक के सामने से गुजर रही थीं, तो आस्तिक ने शारदा देवी को देखकर व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है सासुमा कि यहाँ आपकी खातिरदारी अच्छे से हुई होगी। शारदा देवी ने गुस्से से आस्तिक की तरफ देखा, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर पाई थीं। अस्पताल के कर्मचारी उन्हें अपने साथ ले गए थे। उसे लाचार और बेबस चाहता हुआ देखकर आस्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, पर तभी उसे अपने कंधे पर अरुणिमा के हाथ महसूस हुए। आस्तिक ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज किया और हैरान नज़रों से अरुणिमा को देखने लगा। उसने अपने चेहरे पर थोड़ी उदासी लाई और अरुणिमा से कहा, मम्मी जी कितनी कमज़ोर हो गई हैं ना, यहाँ पर उन्हें ठीक से खाना पीना नहीं दिया जाता है। मैं डॉक्टर से बात करूँगा और मम्मी जी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाऊँगा। अरुणिमा और आस्तिक दोबारा से कार में बैठ गए थे। आस्तिक अरुणिमा को महल छोड़कर फिर अपने ऑफिस निकलने वाला था, लेकिन अरुणिमा ने कहा कि उसे मार्केट में कुछ काम है, तो वो उसे सुपरमार्केट के पास उतार दे। आस्तिक ने वैसा ही किया, उसने अरुणिमा को सुपरमार्केट के पास उतार दिया था। लेकिन सड़क पार करके अरुणिमा एक दूसरी टैक्सी पकड़ती है और कहीं निकल जाती है। 2 घंटे बाद अरुणिमा एक वकील रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। उसे वकील ने अरुणिमा को देख कर कहा, रानी साहिबा, आपको इन सबको समझने में 1 साल लग गया है, आपको नहीं लगता है कि आपको पहले ही कोई एक्शन ले लेना चाहिए? अरुणिमा ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था मुझे। आप नहीं जानते हैं उस इंसान ने मुझे किस तरीके से डरा कर रखा हुआ था। अरुणिमा अपने दोनों सर को पकड़ लेती है। वो वकील अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ रानी साहिबा, मैं भी एक औरत हूँ और आपकी परेशानी बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैं आए दिन ऐसे केसेस से निपटती हूँ जहाँ पर लड़कियों को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब तो आप बहुत छोटी हैं। अरुणिमा के लगभग आंसू निकल आए थे। उसने कहा, मैं क्या करूं वकील साहिबा, आप मुझे बताइए, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, मुझे बस न्याय चाहिए। उसे वकील ने अरुणिमा को देखकर कहा, मुझे तो लग रहा है कि अब राजा साहब आपको मारते नहीं हैं, मतलब अब वो आपके साथ पहले जैसा बिहेव नहीं करते हैं। अरुणिमा कहती है, एक बार कोई इंसान मॉन्स्टर बन जाए तो दोबारा इंसान नहीं बन सकता है, एक बार मॉन्स्टर हमेशा के लिए मॉन्स्टर ही रहता है। जानती हूँ कि अब वो मुझे मारता नहीं है और मुझ पर हाथ नहीं उठाता है, नहीं दुनिया के सामने मुझे जलील करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर का मॉन्स्टर मर चुका है, वो सो रहा है, या फिर स्वास्तिक अभी उसे बाहर आने ही नहीं देना चाहता है। लेकिन जो भी हो, वो उसके अंदर ही है और वो कभी भी बाहर आ सकता है। 1 साल में मैं उस इंसान को इतना तो जान ही गई हूँ। अरुणिमा की पूरी बात सुनकर वकील साहिबा कुछ सोचने लगती है और कहती है, देखिए रानी साहिबा, मैं ऐसे तो बातों की बुनियाद पर कोई केस दर्ज नहीं करवा सकती हूँ। अगर आपको सच में राजा साहब पर केस करना है तो आपको सबूत दिखाने होंगे, बिना सबूत के पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करेगी। इसके अलावा राजा साहब एक ताकतवर आदमी है, उन्हें बाहर आने में देर नहीं लगेगी, इसीलिए आपके पास सबूत कैसा होना चाहिए जो राजा साहब को सजा दिलवाने में कामयाब रहे। देखा जाए तो एक तरह से वकील की बात भी सही थी। अगर अरुणिमा बिना किसी सबूत के आस्तिक के ऊपर केस करेगी तो आस्तिक के लिए कौन सी बड़ी बात है जेल से बाहर आना। पर इन दिनों आस्तिक जिस तरीके से धीरे धीरे अरुणिमा के साथ सही व्यवहार कर रहा था, वो उसकी मंशा नहीं समझ पा रही थी। अरुणिमा चाहती थी कि आस्तिक उसे प्यार करे और आस्तिक चाहता था कि अरुणिमा उसे प्यार करे, पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार का सिर्फ दिखावा कर रहे थे। अरुणिमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी वकील साहिबा कहती हैं, वैसे रानी साहिबा, आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अगर राजा साहब कभी आपको खुद ही अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा जब वो मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। मैं खुद उसकी जिंदगी में नहीं रहना चाहती हूँ, और अगर वो सामने से कहेगा कि अरुणिमा चली जाओ मेरी जिंदगी से, तो उस दिन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन मानूंगी। और एक बार उसकी जिंदगी से निकलने के बाद मैं पलट कर उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। अरुणिमा ने अपने चेहरे पर गुस्सा और नफरत रखते हुए ये कहा था। वकील साहिबा ने कहा, तो फिर रानी साहिबा, आपको सबूत चाहिए। बिना सबूत के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अरुणिमा अपने आंसू साफ करती है और कहती है, ठीक है, अगर आपको सबूत ही चाहिए तो मैं आपको सबूत ला कर दूंगी। वकील साहिबा ने कहा, वैसे इसके लिए आपके पास एक गवाह भी होना चाहिए, मतलब अगर आपके पति के परिवार से कोई आपकी तरफ हो जाए और वो आपके हक में गवाही दे तो ये राजा साहब के लिए सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि कोर्ट परिवार वालों की गवाही को पुख्ता सबूत में ही मानता है। वकील की बात पर अरुणिमा सोचने लग गई, आस्तिक के खिलाफ वो उसके भाई बहनों को कर सकती है क्या? नहीं, ये बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी है। प्रणाली आस्तिक की ही परछाई है। आस्तिक के खिलाफ एक शब्द भी सुनना उसे गवारा नहीं है। पृथ्वी और कीर्ति, उनसे इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके लिए आस्तिक उनका बड़ा भाई नहीं है बल्कि उनके पिता के समान है। लेकिन तभी उसके जहन में पृथ्वी और अपनी दोस्ती वाली बात आती है। भले ही पृथ्वी ने कहा है कि वो आस्तिक को अपने पिता के रूप में देखता है, क्योंकि बचपन से ही आस्तिक ने जिन परिस्थितियों में उन्हें पाला है वो देखना किसी के लिए भी बहुत ही दयनीय हो सकता है। लेकिन पृथ्वी के साथ इस समय एक और नाम जुड़ा हुआ है, जानवी का। पृथ्वी कितना ही अपने भाई के लिए वफादार क्यों ना हो, लेकिन उसका एक पक्ष जानवी के साथ भी जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर पृथ्वी को अपनी तरफ करना है तो इसके लिए अरुणिमा को जानवी का सहारा लेना पड़ेगा। अरुणिमा उठती है और वकील से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए वकील साहिबा, सबूत और गवाह आपको दोनों मिल जाएंगे, इसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा।